सुयोजन में 26 अधिक कर लो तो विस्तार हो गया षडविंश पंच योजन शत विस्तार हो भरत। इसको पढ़ते समय कई बार षडविंशति बोलते हैं ना, पाठ करते समय भरत षडविंशति, तो विंशति नहीं है, ती का लोप हो जाता है, षडविंश रहता है। आ गया ना समझ में? बहुत सरल बात है, षडविंशत नहीं षडविंश, षडविंश पाठ है वो, विंशति के ती का लोप हो गया है और वो ती चलता ही है उसमें, उच्चारण हो जाएगा ना। भरत षडविंश पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। तो विस्तारो यस्य षडविंश पंच योजन शत विस्तारो भरत, इतना चौड़ा भरत है कि मेतावाने सिर्फ इतना ही है क्या 526? ना उतना नहीं है, थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। इत्याह इसलिए कहते हैं षट चैकोन विंशति भागा योजन से, एक योजन का 6/19 भाग और जोड़ लेना उसमें, विस्तारोस्येत्यभिसंबध्यते, इसका विस्तार होता है इस प्रकार से अभिसंबंध कर लेना चाहिए, किया जाता है। इतरेषां विष्कम्भ विशेष प्रतिपत्यर्थमाह, बाकी जो ऐराव भरत के बाद अगला क्या है, हैमवत हरि विदेह रम्यक, ऐसे इनके विस्तार को बतलाने के लिए कह रहे हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता, उस भरत से दुगने दुगने विस्तार वाले वर्षधर, वर्षधर यानी पहाड़ और वर्ष यानी क्षेत्र, अभी आज भी भारत वर्ष बोलते हैं, वो प्राचीन संज्ञा है। और भरत वासस ऐसे करके एक प्राकृत में सबसे पुराना जो नाम मिला है भरत क्षेत्र का, भारत देश का, वो प्राकृत भाषा में मिला है। अभी तो पिछले साल जानकारी मिली थी अहमदाबाद में कि सबसे पहला भारत वर्ष ये नाम कहाँ मिला, तो सबसे पुराना किसी प्राकृत वाक्य में ये नाम मिला था। तो ये मतलब ये हुआ कि जो पहला क्षेत्र है उससे दुगना वो पर्वत होगा हिमवान, और हिमवान से दुगना वो क्षेत्र होगा हैमवत, फिर उससे दुगना उसके आगे वाला पर्वत, इस प्रकार क्रम चलता रहेगा। विदेहांता विदेह पर्यंत ये क्रम चलाना। ततो भरतात् द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येषां तैमे तद् द्विगुण द्विगुण विस्तारा हैं, उस भरत से दुगने दुगने विस्तार हैं जिनके, वे तद् द्विगुण द्विगुण विस्तार वाले कहे जाते हैं। के ते वे कौन से हैं, कौन है, तो वर्षधर वर्षा पहाड़ और क्षेत्र। किन सर्वे, क्या सारे के सारे, न इति आह, नहीं सारे के सारे नहीं, विदेहांत इति विदेह तक ये व्यवस्था है। अथोत्तर अथोत्तरेषां कथम इति अतः, फिर उत्तरेषां ये सर्वनाम होने के कारण उत्तर शब्द के साथ में ऐसी विभक्ति लगाई है बहुवचन, उत्तर शब्द का बहुवचन में उत्तरेषां बने, उत्तराणाम नहीं बनेगा, उत्तरेषां बना है, जैसे सर्वेषां बनता ना वैसा। कथम इति अतः, उत्तर दिशा के जो पर्वत और क्षेत्र हैं उनमें कैसी क्या व्यवस्था है, इसलिए अतः यहाँ से आह सूत्र कहते हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तर वाले दक्षिण के तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। उत्तरा ऐरावत आदेव, अब भारत में उत्तर और दक्षिण में बराबर हो ऐसा मत समझ लेना, उत्तरा दक्षिण तुल्य है ना, मेरु पर्वत के उस तरफ उत्तर दिशा में और यहाँ दक्षिण दिशा में सब बराबर बराबर हिसाब रहता है। उत्तरा ऐरावत आदेव नीलांता, उत्तर वाले जो ऐरावत आदि हैं नील पर्यंत, नील पर्यंत यानी नील पर्वत तक, भरत आदि भिर दक्षिण तुल्या द्रष्टव्या, भरत आदि की अपेक्षा जो दक्षिण वाले हैं तुल्या एक समान देख लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अतीतस्य सर्वस्यायम विशेषो वेदितव्य, अतीतस्य यानी जो पहले बतलाए थे उन सभी का अयम विशेषो वेदितव्य, यही फर्क जान लेना। तेन ह्रद पुष्करादि नाम तुल्यता योज्य, इसी प्रकार उस इसके कारण ह्रद यानी सरोवर, पुष्कर यानी कमल और आदि शब्द से वो देवियों आदियों के आवास जो हैं उनकी भी तुल्यता जोड़ लेना। अत्राह, अब यहाँ कोई कहते हैं कि उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु, कहे गए भरत आदि क्षेत्रों में मनुष्याणाम मनुष्यों की किन तुल्य अनुभव आदि, क्या एक समान अनुभव आदि होते हैं, भोग आदि, अनुभव का मतलब यहाँ पर सांसारिक सुख आदि का अनुभव, वो सब समान होते हैं। आहोस्वित अथवा अस्ति कश्चित प्रतिविशेष इति अत्र उच्यते, क्या कोई उसमें कोई भेद भी होता है, इसलिए यहाँ कहा जाता है भरत ऐरावतयोर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास होता रहता है, माने घटा बढ़ी चलते रहती है। किसके द्वारा? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा। कैसी है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी? षट समयाभ्याम, छः छः समय हैं जिनमें। उत्सर्पिणी में भी छः काल होते हैं और अवसर्पिणी में भी छः काल होते हैं। तो ये षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इनके विशेषण हो गया है। मुत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम इनका विशेषण क्या बन गया? षट समयाभ्याम। और ये विशेष्य हो गए छः समयों वाले उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्रों में वृद्धि और ह्रास चलते हैं। वृद्धिश्च ह्रासश्च वृद्धि ह्रासो, द्वंद्व समास कर दिया, द्विवचन हो गया। काभ्याम किनके माध्यम से? षट समयाभ्याम, छह कालों द्वारा। कैसे, किसके छह काल? तो उत्सर्प मुत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, छह कालों वाली उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इनके द्वारा। कयो हो, कहाँ पर होते हैं पर वृद्धि और ह्रास? भरत ऐरावत यो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में। न तयो क्षेत्रयोर वृद्धि ह्रासौ स्तः असंभवात्, उन क्षेत्रों में घटा बड़ी नहीं होती। यानी भरत क्षेत्र बड़ा हो जाए 526 और 6/19 योजन से बढ़ करके, उत्सर्पिणी काल में और लंबा चौड़ा हो जाए और अवसर्पिणी काल में एकदम घट करके सिकुड़ जाए, ऐसा नहीं, असंभवात, क्योंकि वो असंभव है। तत्स्थानां मनुष्याणां वृद्धि ह्रासौ भवतः, वहां स्थित स्थानम है, तत्स्थानम यानी तिष्ठति इति स्थः, तेषु तिष्ठति, तयोः तिष्ठति इति तत्स्थाः, तिष्ठन्ति इति तत्स्थाः, वहां रहने वाले जो मनुष्य उनमें वृद्धि और ह्रास भवतः होते हैं। अथवा अधिकरण निर्देश, अथवा अधिकरण का निर्देश कर लो। भरते ऐरावते च, भरत और ऐरावत में मनुष्याणां वृद्धि ह्रासौ इति, मनुष्यों के वृद्धि और ह्रास होते हैं। किं कृतो वृद्धि ह्रासौ, किस कौन करता है वृद्धि ह्रास? तो बोले किस अपेक्षा से वो किया जाता है वृद्धि ह्रास? तो बोले अनुभव आयु प्रमाण आदि कृतो, अनुभव है माने भोगोपभोग और आयु का प्रमाण होता है, और आदि शब्द से और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनसे किए जाने वाले वो वृद्धि और ह्रास होते हैं। अनुभव उपभोग, अनुभव का मतलब उपभोग, आयुर आयु का मतलब जीवित परिमाणम, जीवन का जो परिमाण यानी माप, वो प्रमाणम, प्रमाण का अर्थ क्या लिया? आयु प्रमाण, ये अलग शब्द है, प्रमाण का अर्थ अलग बता रहे हैं। शरीरोत्सेद, शरीर की ऊंचाई का अर्थ प्रमाण होता है। इत्येवम् आदिभिर, इत्यादि के द्वारा वृद्धि ह्रासो मनुष्याणां भवतः, मनुष्यों के वृद्धि और ह्रास होते हैं। किं हेतु को पुनस्तौ, और वो जो वृद्धि ह्रास है उसका हेतु कौन है? तो बोले काल हेतु को, काल उनका हेतु है, बहुव्रीहि समास है। काल हेतुर ययोस्तौ, काल हेतु कौ, काल है हेतु जिनके वृद्धि और ह्रास के, वो काल हेतु कौ। सच कालो द्विविध, वो काल दो प्रकार का है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चेति, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इस प्रकार। तद्भेदा प्रत्येकम षट, उसके भेद एक एक के छह भेद हैं। अनवर्थ संघिनी चैते, और यथा सार्थक संघिनियां वाले हैं वे दोनों। अनुभव आदिभिर उत्सर्पणशीला उत्सर्पिणी, भोग आदि की अपेक्षा से जो उत्सर्पणशीला मैंने बढ़ोतरी को प्राप्त करने वाले स्वभाव वाली उत्सर्पिणी है। तैरेव अवसर्पणशीला अवसर्पिणी, उन्हीं की अपेक्षा से अवसर्पणशीला घटने वाली अवसर्पिणी है। तत्रावसर्पिणी षड्विधा, उनमें अवसर्पिणी छह प्रकार की है। सुषमा सुषमा, समा का अर्थ वर्ष होता है, तो सुषमा का अर्थ है सुंदर वर्ष वाले, उसको सुषमा कहते हैं। तो सुषम सुषमा पहला काल है। अब इसको याद रखना बहुत सरल है, एक उपाय हमने बताया था पहले कि अवसर्पिणी के शुरू के तीन नाम सु से चालू होंगे, अंत के तीन नाम दु से चालू होंगे, और उत्सर्पिणी में इससे उल्टा क्रम है, तो आसानी से याद रहते हैं। तो सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषम दुष्षमा, फिर चौथा काल दुषम दुष्षम सुषमा, दुष्षमा और अति दुष्षमा, अति दुष्षमा को दुष्षमा दुष्षमा दुष्षम दुष्षमा कहते हैं। चेती श्रद्धा दे ह्रस्व, इस सूत्र से ये सुषम सुषमा जो बना है ना रूप, श्रद्धा दे ह्रस्व, उसमें पहला जो सुषमा था उसमें म में से आ का लोप हो गया है, सुषम है, दिख रहा सुषम सुषमा, सही लिखा है, सुधारण मत देना, कोई सुषमा मत कर देना। वो सुषम क्यों है वो बता रहे हैं, श्रद्धा दे ह्रस्व एक सूत्र आता व्याकरण में, तो तो उससे वो ह्रस्व हो जाता है। तो वैसे यहाँ दुष्यम दुष्मा ऐसा बन जाएगा, अगर अतिश दुष्मा ना लिखो तो दुष्यम दुष्मा बनेगा। जैसे दुष्यम सुषमा भी बनाया है वहां पर बीच में, देखो आप चौथा काल। तो उत्सर्पिण्य भी अति दुष्माद्या सुषम सुषमांता षड विधैव भवति। उत्सर्पिणी भी अति दुष्मा को प्रारंभिक बना करके और सुषम सुषमांत पर्यंत छह प्रकार की ही होती है। अवसर्पिण्या परिमाणम, अवसर्पिणी का परिमाण यानी माप कितना है, तो दश सागरोपम कोटि कोटे, दस कोड़ा कोड़ी सागर है। कोटि कोटे संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में अपन कोड़ा कोड़ी बोलते हैं। उत्सर्पिण्या अपि तावत्य एव, उत्सर्पिणी भी उतनी ही होती है। तावत्य ये स्त्रीलिंग शब्द है, तावती शब्द का बहुवचन बन गया है, नदी नद्यौ नद्य, तावती तावत्यौ तावत्य ऐसा एव उतनी ही होती है। सो भई कल्प इत्याख्याय थे, इन दोनों को मिला लो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी को तो कल्प ऐसा कहा जाता है, उसको कल्प काल कहते हैं। तत्र सुषम सुषमा, उनमें सुषम सुषमा नाम का जो काल है, चतस्र सागरोपम कोटि कोट्य, चार कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण है पहला काल अवसर्पिणी का। तदादो मनुष्य उत्तर कुरु मनुष्य तुल्या, उसके प्रारंभ में जो मनुष्य होते हैं वो उत्तर कुरु के मनुष्य के बराबर होते हैं। अब उत्तर कुरु के मनुष्य कैसे होते हैं उसको अभी देखेंगे अपन आगे, इसमें इस अध्याय में सब वर्णन है। ततः क्रमेण हानौ सत्यम, फिर क्रम से हानि हो जाने पर सुषमा भवती, फिर सुषमा नाम का दूसरा काल आ जाता है। तीसरा सागरोपम कोटि कोटि, तीन कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो चार और तीन सात कोड़ा कोड़ी सागर दो काल में निकल गए। फिर इसके आगे तदादो मनुष्य हरिवर्ष मनुष्य समाह, उसके प्रारंभ में जो मनुष्य होते हैं वो हरिवर्ष मध्यम भोगभूमि के मनुष्यों के समान होते हैं। तथा क्रमेण हानौ सत्यम, फिर क्रम से हानि होने पर सुषम दुष्यमा भवती, सुषम दुष्यमा नाम का काल होता है। द्वे सागरोपम कोटि कोट्यौ, दो कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण होता है। तदादो मनुष्य हेमवतक मनुष्य समाह, उसके प्रारंभ मनुष्य हेमवतक नामक भोगभूमि जो जगन्य भोगभूमि वहां के मनुष्यों के बराबर होते हैं। तथा क्रमेण हानौ सत्यम, फिर क्रम से हानि होने पर दुष्यम सुषमा भवती, चौथा काल आता है अवसर्पिणी का। एक सागरोपम कोटि कोटि द्विचत्वारिंशत् वर्ष सहस्रोना, एक कोड़ा कोड़ी सागर में दो द्विचत्वारिंशत् वर्ष सहस्रोना, 42,000 वर्ष कम कर लो उतना वो तीसरा चौथा काल होता है। तदादो मनुष्य विदेह जन तुल्या भवन्ति, उसके प्रारंभ में मनुष्य विदेह के मनुष्यों के समान होते हैं। तथा क्रमेण हानौ सत्यम, फिर क्रम से हानि होने पर दुष्यमा भवति, पांचवा काल होता है दुष्यमा। एक विंशति वर्ष सहस्राणी, 21,000 वर्ष प्रमाण होता है। तथा क्रमेण हानौ सत्यम, फिर क्रम से हानि होने पर अति दुष्यमा भवति, अति दुष्यमा नाम का छठा काल होता है। एक विंशति वर्ष सहस्राणी, 21,000 वर्ष का वो भी होता है। एवं उत्सर्पिण्य भी विपरीत क्रमा वेदितव्य, इसी प्रकार उत्सर्पिणी भी विपरीत क्रम वाली जान लेना चाहिए। तो उत्सर्पिणी में तीसरे काल में तीर्थंकर होंगे, यहाँ चौथे में हुए थे, उत्सर्पिणी में तीसरे काल में तीर्थंकर होंगे। इसलिए ऐसा मत सोचना कि अब उत्सर्पिणी के चौथे काल में हमें मोक्ष जाना ही है, और जरूरी नहीं है कि अपने को उत्सर्पिणी अवसर्पिणी वाले क्षेत्रों से ही मोक्ष जाना हो। ऐसा कंपलसरी है कि अपन भरत और ऐरावत से इतना प्रेम है क्या भरत ऐरावत से कि यहीं से जाएंगे मोक्ष, जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा राग भी हो सकता है सम्यक दृष्टियों में कि नहीं हमें तो ये स्थान बहुत अच्छा लगता है, शिखर जी या फिर कोई चंपापुरी पावापुरी कोई भी, तो ऐसा संभव है। लेकिन ऐसा आग्रह तो अनावश्यक है, क्योंकि मोक्ष तो अपने को कहीं से भी मिले, मिलना चाहिए बस, मिल तो जाए। अथेतरासु भूमिषु का अवस का वस्थेत्यता, अब अपर जो बाकी भूमियां हैं उनकी अवस्था क्या है, इसलिए यहां से सूत्र कह रहे हैं ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता, इन दो को छोड़कर जो अपरा माने बाकी भूमियां हैं वे अवस्थित है, उनमें उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी से परिवर्तन नहीं होता, वो जैसी है वैसी अवस्थित रहती है, बदलाव नहीं होता। अब बदलाव नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर पर्याय भी नहीं बदलती जीवों की पुद्गलों की, पर्याय बदलती है, लेकिन भूमियों में जो क्रम यहां पर बतलाया था उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में जो परिवर्तन होता है वैसा परिवर्तन वहां नहीं। ताभ्याम भरत ऐरावताभ्याम अपरा भूमि अवस्थिता भवन्ति, उन भरत और ऐरावत को छोड़कर बाकी जो भूमियां हैं वो अवस्थित होती है। नहीं तत्रोत्सर्पिण्य अवसर्पिण्यौस्तः, वहां उत्सर्पिणी और अवसर्पिणियां नहीं होती। किन तासु भूमिषु, क्या उन भूमियों में मनुष्यास्तुल्यायुषः, सब मनुष्य एक बराबर आयु वाले होते हैं? आहोस्वित अथवा कश्चित अस्ति प्रतिविशेष इति आह, क्या कोई उसमें भेद होता है? इसलिए यहां से सूत्र कह रहे हैं एक द्वित्रिपल्लोपन स्थित हेमवत हारे वर्षक दैव कुरव काह। इसका अर्थ अपन टीका में देखें, हेमवते भवा हेमवत काह, हेमवत क्षेत्र में जन्म लेने वाले हेमवतक कहलाएंगे। क बहुव्रीहि समास में क प्रत्यय होता है। इत्येवं मुनि सति, इस प्रकार ये मुनि एक मुनि प्रत्यय होता है, उसके होने पर मनुष्य संप्रत्ययो भवति, मनुष्य का ज्ञान अपने को प्राप्त। हेमवतक कह दिया तो समझ लेना कि ये हेमवत क्षेत्र वाले मनुष्य की चर्चा है, उसका ज्ञान होता है। एवं उत्तरीयोरपि, इस प्रकार उत्तरीयोरपि और भी जो आगे के दो क्षेत्र हैं उनका भी जान लेना। हेमवतक आदय त्रय, हेमवतक आदिक तीन, एकादय त्रय, एक आदिक भी तीन है। स्थिति में भी तीन भेद कर दिए, और हेमवतक हारिवर्षक और दैव कुरवक, ऐसे तीन भेद कर दिए। तत्र यथा संगम अभिसंबंध क्रियते, उनमें यथा संख्य संख्या के क्रम से संबंध किया जाता है। एक पल्लोपम स्थितयो हेमवतक, एक पल्लोपम आयु वाले हेमवतक, हेमवत हेमवत क्षेत्र के मनुष्य है। फिर द्विपल्लोपम स्थितयो हारिवर्षक, द्विपल्लोपम दो पल्लोपम स्थिति वाले हरिवर्ष क्षेत्र के हारिवर्षक मनुष्य हैं। त्रिपल्लोपम स्थितयो, तीन पल्लोपम स्थिति वाले दैवकुरवक, देवकुरु क्षेत्र वाले जो मनुष्य उत्तम भोग भूमि वाले वे हैं दैवकुरवक। तत्र पंचासु पंचसु, वहाँ पांच हैमवतेषु, पांच हैमवतों में सुषम दुष्यमा सदावस्था, हमेशा सुषम दुष्यमा यानी तीसरा काल अवसर्पिणी का अवस्थित रहता है। तत्र मनुष्य एक पल्लोपम आयुषु, वहाँ के मनुष्य एक पल्लोपम आयु वाले होते हैं। द्विधनु सहस्रोच्छ्रित सहस्रोच्छ्रिता, 200 धनुष ऊंचे रहते हैं। चतुर्थ भक्ताहारा नीलोत्पल वर्णा, चतुर्थ भक्ताहारा माने चौथी बेला में भोजन करके आहार उनका करता है। चौथी बेला का मतलब यहाँ जैसे आज दोपहर को आहार किया, शाम की बेला छोड़ दी, कल दो बेलाएँ छोड़ दी, और फिर परसों जो बेला आएगी उस समय आहार करेंगे, माने एक उपवास के बाद आहार। वहाँ उपवास नाम नहीं दिया है क्योंकि उपवास जो होता है वो संकल्प पूर्वक होता है, वहां पर ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ऐसी है। चतुर्थ भक्त आहार, क्योंकि भोग भूमि है इसलिए यहाँ भोजन की बात कर रहे हैं, उपवास का नाम नहीं लिया है वहां पर। और यहां पर अगर एक दिन छोड़कर आहार ले रहे तो फिर बोलेंगे उपवास या फिर अनशन या लंघन, कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि यहाँ का सामान्य क्रम वो नहीं है। नीलोत्पल वर्ण, नीलोत्पल का मतलब होता है नील कमल जैसे वर्ण वाले होते हैं, उनका रंग जो होता है नीला होता है। पंचसु हरिवर्षेशु, पांच जो हरिवर्ष है, अब पांच कौन से हैं? पांच भरत, पांच ऐरावत, ये सब सारे पांच पांच क्षेत्र बता रहे हैं, तो ये पूरे ढाई द्वीप में पांच पांच हो जाएंगे। तो पंचसु हरिवर्षेशु सुषमा सदा अवस्थिता, पांच हरिवर्ष क्षेत्रों में हमेशा सुषमा नाम का काल अवस्थित रहता है, यानी अवसर्पिणी का दूसरा काल। तत्र मनुष्य, उसमें मनुष्य द्विपल्लोपम आयुषस, दो पल्ले आयु वाले होते हैं, और चतुश्चाप सहस्रोत्सेदा, 4000 धनुष ऊंचे होते हैं, 4000 धनुष ऊंचे यानी दो कोस ऊंचे, पहले जगन्य भोग भूमि में एक कोस ऊंचे थे। और षष्ठ भक्त आहार, छठी बेला में भोजन करके आहार करने वाले होते हैं। शंख वर्ण, शंख के समान सफेद वर्ण वाले होते हैं, यानी जगन्य भोग भूमि में नील वर्ण, मध्यम भोग भूमि में सफेद वर्ण है। और षष्ठ भक्त आहारा का मतलब यहाँ जैसे बेला करके अगर कोई आहार करे तो दो दिन आहार नहीं लेगा, वैसे ही वहाँ पर भी दो दिन के अंतराल से आहार करते हैं, लेकिन उसको उपवास नहीं कहा जाता। पंचसु देवकुरुषु, पांच देव गुरुओं में सुषमा सुषमा सदा अवस्थिता, हमेशा सुषमा सुषमा अवस्थित रहता है, यानी पहला काल अवसर्पिणी का बना रहता है। तत्र मनुष्यास, वहाँ के मनुष्य त्रिपल्लोपम आयुष, तीन पल्ले आयु वाले होते हैं। षड धनुष सहस्रोच्छ्राया, 6000 धनुष ऊंचे होते हैं, तीन कोस। अष्टम भक्ताहार, मैंने समझ लो यहाँ तेला के बाद आहार कर ले तो वैसे ही वहां पर भी आठवीं भक्त माने आठवीं बेला में आहार करने वाले होते हैं। कनक वर्ण, स्वर्ण जैसे वर्ण वाले होते हैं। अथ उत्तरीषु का अवस्था इत्यतः, अब उत्तर वाले क्षेत्रों में कैसी अवस्था है, क्या अवस्था है, तो इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं तथोत्तरा, वैसी ही व्यवस्था ऊपर। यथा दक्षिणा व्याख्या था, जैसे दक्षिण वालों की व्याख्या की गई तथा उत्तरावेदितव्य, उसी प्रकार उत्तर वालों को जान लेना चाहिए क्षेत्रों को और मनुष्यों को। हैमवत का हैमवत कई स्तुल्य, हैरण्यवत का हैमवत कई स्तुल्य। हैरण्यवतक माने हैरण्यवत क्षेत्र के मनुष्य हैमवतक हैमवत मनुष्य के मनुष्यों के तुल्य हैं। राम्य का हरिवर्ष कई स्तुल्य, राम्यक यानी रम्यक क्षेत्र वाले मनुष्य हरिवर्ष क्षेत्र के मनुष्यों के बराबर है। दैव देव कुरव कई रोत्तर कुरव का रोत्तर कुरव का देव कुरव कई छपाएगा, दैव होना चाहिए, ऐ की मात्रा चाहिए थी, इसमें ए छपे हैं। तो दैव कुरव मतलब देव कुरु से संबंध रखने वाले जो मनुष्य हैं वे उत्तर कुरु वालों के समाख्याता हैं। दैव कुरुवक जो मनुष्य हैं उनके समान उत्तर कुरु वाले मनुष्य समाख्याता अच्छी तरह से आख्यात बताए गए हैं। अतः विदेहेषु अवस्थितेषु का स्थितिरित्योच्यते स्थितिरित्यत्रोच्यते। अब विदेह विदेहों में पंच विदेहों में अवस्थित जो मनुष्य हैं उनकी का स्थिति क्या स्थिति है, इसलिए यहाँ पर सूत्र कहा जाता है विदेहेषु संख्ये कालाः। विदेहों में संख्यात काल की स्थिति होती है। सर्वेषु विदेहेषु सब विदेहों में संख्ये काला मनुष्य संख्यात काल आयु वाले मनुष्य होते हैं। तत्र काल वहाँ काल कौन सा चलता है, सुषम दुष्यमांतोपमः। सुषम दुष्यम जो है तीसरे काल का अंतिम समय उसके समान सदा अवस्थित हमेशा अवस्थित रहता है। ये खास बात है, यानी विदेह क्षेत्र में अवसरपिणी का चौथा काल चलता है ऐसा नहीं है, यानी अवसरपिणी के तीसरे काल के अंत में जो स्थिति रहती है वैसी स्थिति वहाँ हमेशा बनी रहती है सदा अवस्थित। मनुष्याश्च पंच धनुष शतोत्सेधाः, मनुष्य 500 धनुष ऊंचे रहते हैं। नित्याहारा रोज आहार लेते हैं। उत्कर्षण एक पूर्व कोटि स्थिति कहा, अधिक से अधिक एक पूर्व कोटि स्थिति वाले होते हैं। जगन्नीन अंतर्मुहूर्त आयुष, कम से कम अंतर्मुहूर्त आयु वाले होते हैं। तस्याश्च संबंधे गाथाम पठंती, उससे संबंध रखने वाली गाथा यहाँ पर पढ़ी जाती है, पढ़ते हैं। पुव्वस्सदुपरिमाणम, पूर्व से संबंध रखने वाली गाथा है। पूर्व किसको कहते हैं, पुव्वस्सदुपरिमाणम सदरिं खलु कोडि सद सहस्साइं छप्पन्नं च सहस्सा बोद्धव्वा वास कोडीनम। पूर्व का जो परिमाण है वो कितना है, सदरिम 70 और कोडि सद सहस्साइं शत सहस्र यानी लाख, 70 लाख करोड़, और छप्पन्नम च सहस्सा 56,000 और वास कोडीनम और 20 वर्ष जानना चाहिए। यानी एक पूर्व में कितने क्या हो गया हिसाब, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब, 70 लाख करोड़ 56,020 वर्ष एक पूर्व में होता है, और 20 कोडीनम, अच्छा ठीक है, वास का अर्थ 20 ना लेकर के वर्ष करोड़ वर्ष, ठीक है ये सही है। तो कैसा बनेगा, 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ इनको जोड़ दो तो उतना लंबा चौड़ा पूर्व का परिमाण होता है। 84 लाख पूर्व का परिमाण आदिनाथ भगवान का था आयु का, कितनी लंबी आयु रही होगी। उक्तो भरतस्य विष्कम्भ, भरत का भरत की चौड़ाई तो बता चुके थे। पुनः प्रकारांतरेण तत्प्रतिपत्यर्थमः, फिर से दूसरे प्रकार से उसकी जानकारी के लिए कहते हैं, भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरत की चौड़ाई जम्बूद्वीप के 90 शतभागः 190वां भाग है। पहले 100,000 योजन में इसका भाग दे दो आप जो पहले आया था तो 190 का अंक आएगा। जम्बूद्वीप विष्कम्भस्य, जम्बूद्वीप की चौड़ाई के योजन शत सहस्रस्य 1,00,000 योजन के 90 शतभागीकृतस्य 1वो भागो भरतस्य विष्कम्भ। 190 हिस्से कर दिए जाए 1,00,000 के तो फिर जो 1 हिस्सा रहेगा वो भरत की चौड़ाई है। सब पूर्वोक्त है, वो पहले बतला चुके हैं। उक्तम जम्बूद्वीपम परिवृत्य, कहे गए जम्बूद्वीप को घेर कर वेदिका स्थित, एक वेदिका है। तथा पर्व लवणोद, उसके आगे लवणोद नाम का समुद्र है द्वियोजन शत सहस्र वलय विष्कम्भ, 2,00,000 योजन वलय विष्कम्भ यानी वो जो वलयाकार है ना उसकी चौड़ाई है उतनी, 2,00,000 योजन चौड़ा है। ततः परो धात्की खंडो, उसके आगे धात्की खंड है। धात्की खंड के बारे में हमने पहले कहा था कि इसको हम पहले घातकी खंड बोलते थे, फिर बाद में सुधरा तो धात्की खंड हो गया। धात्की का अर्थ बहेड़ा होता है, बहेड़ा जानते ना, हर बहेड़ा आंवला, तो बहेड़ा नाम का जो फल होता है उसको धात्की बोलते हैं संस्कृत में। तथा परो धात्की खंडो, उसके आगे धात्की खंड है। द्विपश्चतुर योजन शत सहस्त्र विलय विष्कम्भ, क्योंकि अब वो सब चूड़ी के आकार के हैं पूरे घेर घेर करके, तो वो 400 योजन वलय विष्कम्भ उसकी चौड़ाई हो जाती है। अब उस धात्की खंड में कैसी क्या व्यवस्था है उसको अगले सूत्र में अगली बार अपन पढ़ेंगे। कल तो छुट्टी है, कल अष्टमी है, तो कल कार्तिकीय अनुपरीक्षा चलने देंगे सुबह शाम, सुबह दोपहर।